अभी तक किसी ने उसको कॉल नहीं की है।
मैं शम्स हूं।
उस्ताद, आपको पता नहीं कि कितना आपसे मिलने के लिए बेचैन था।
मैं भी इसी तरह।
इतना अच्छा मौसम, जरा मुस्कुराओ, आखिर हम घूमने फिरने आए हैं। इन साहब को दे, एक तस्वीर हमारी ले ले। माफ कीजिएगा, क्या आप हमारी एक तस्वीर ले सकते हैं?
जरूर।
शुक्रिया। जरूर।
तुमने चेहरी क्यों चढ़ाई हुई मेरे दोस्त? हंसो, इस तरह खूबसूरत जगह पर आए हो तो थोड़ा हंसो।
सही कह रहे हैं ना, क्या एक जहमत कीजिएगा, अगर अच्छी नहीं आई तस्वीर तो फिर से।
जरूर जरूर, टाइम है तुम्हारे पास?
जो चीज मेरे पास बहुत ज्यादा है वो है टाइम।
अच्छी आई है।
हाँ ठीक आई है, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया।
कोई बात नहीं।
इस तरह के इंसानों को जब देखता हूँ जो खुश होने का दिखावा करते हैं तो मेरा जी मतलाता है, नफरत है मुझे।
तुम क्यों सोचते हो कि ये लोग खुशकिस्मत होने का दिखावा कर रहे हैं? शायद ये हकीकत में खुशकिस्मत है।
मैं भी इसी तरह सोचता था, लेकिन बिलाखिर मेरा काम पहुंच गया खुदकुशी तक। ये सब दिखावा है।
देख रहे हो, ये पॉल्यूशन से भरा शहर घरों और इमारतों से भरा हुआ है। इन घरों में हर एक में एक जिंदगी जारी है। तुम्हारी भी अपनी जिंदगी है। तुम्हें मुबारकबाद कहता हूँ मेहरदाद, तुमने एक बहुत बड़े तजुर्बे को पीछे छोड़ा है। तुम मौत के करीब जाकर वापस आए हो। अब तुम जिंदगी बसर करो, अपनी ज़िंदगी को इस तरह बनाओ जो तुम चाहते हो, इस तरह नहीं जो दूसरे तुम पर मुसलत करना चाहते हैं। खुश रहो, खुश रहो।
कहना बड़ा आसान है, किस तरह खुश रह सकता हूँ? मैंने अफसाना से चाहा कि आपसे मुलाकात करूँ इस गरज से। बताएं कि मुझे किस तरह ज़िंदगी गुजारनी होगी, किस तरह खुश रहूँ?
पहले खुश रहने की आदत डालो तो।
लेकिन मैं खुश रहने के लिए कोई वजह नहीं देख पा रहा हूँ। सारी बदकिस्मती, सिर्फ मायूसी।
खुशी इंसानों के अंदर से शुरू होती है। क्या तुमने किताबें नहीं पढ़ी हैं? क्यों तुम सोचते हो कि किसी को तुम्हारे साथ रहना चाहिए ताकि खुश रहो? तुम्हारे प्यारे, तुम्हारे बच्चों, तुम्हारे माँ बाप को क्यों? इत्तेफाक से ये लोग बहुत से मौके पर इंसानों की खुशी में रुकावट बन जाते हैं। तुम्हें आज़ाद रहना चाहिए, अपने आप को हर कैदोबंद से आज़ाद करो, हर चीज़ को तर्क कर दो। تھوڑی سی خودغرضی بری چیز نہیں ہے.
آپ دوسروں سے مختلف ہیں. مجھے بتائیے کہاں سے شروع کروں.
تم چیخو چلاؤ کہ تم خوش رہنا چاہتے ہو. تم دیکھ رہے ہو ابھی بھی اپنی توانائی پہ یقین نہیں ہے. چلانا آسان ہے لیکن تم اس طرح اپنے آپ کو روک لیتے ہو. تم اب بھی اپنی ذات کی قید و بند میں ہو.
میں خوش رہنا چاہتا ہوں. میں خوش رہنا چاہتا ہوں.
صبح سویرے جب آتے ہو تو اچھی جگہ تمہیں مل جاتی ہے.
گاڑی کے پاس وہ لوگ
اور یہ بھی سحر خیز ہونے کی وجہ سے ہے نا
استاد.
مجھے مت کہو استاد. میں نے ابھی تمہیں کچھ سکھایا نہیں ہے. میں نے کوئی بات نہیں کی ہے.
یہی کہ آپ نے مہربانی کی اور مجھ سے ملاقات کی ہے میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے.
کتابوں کو پڑھو.
میں نے کئی بار پڑھی ہیں.
زیادہ پڑھو. اس حد تک پڑھو کہ تمہارے ذہن اور دل میں اتر جائے. کوشش کرو یاد کرنے کی. اس کی نظموں اور ترانوں کو گنگناؤ.
اگر مجھے کوئی سوال وغیرہ
اگلی مرتبہ جب ہم ایک دوسرے سے ملیں گے تب پوچھنا. تو اگلی مرتبہ تک خوش رہو.
میں کس طرح سے آپ سے رابطے میں رہ سکتا ہوں؟
وقت آنے پر میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا.
فور ہنڈریڈ. کیا میں مطمئن رہوں؟
میرے کنٹرول میں. آپ بے فکر رہیں.
کوئی مرداد کے پیچھے تھا اس پر نظر نہیں رکھی؟
ہمیں کوئی نظر نہیں آیا. اب وہ اپنے گھر کی پارکنگ میں چلا گیا ہے.
ٹھیک ہے. اوکے شکریہ. کسی کو وہاں پر چھوڑو اور باقی سب لوگ واپس آ جاؤ. اسٹیشن اوور.
جی سر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. کچھ پتہ ہے کہاں آج کل تم؟
میں چوکنا ہو گیا تھا کہیں خورامان نے میرے پیچھے کسی کو نہ لگایا ہو اسی لیے بھاگ نکلا.
مجھے بھوک لگی تھی میں نے کھا لیا. جب تک ٹھنڈا نہ ہوا تم بھی کھا لو.
آپ کی ٹیم میں سے کسی کو پتا ہے کہ میں ایک موہرا ہوں؟
صرف صادق اور احمد کو پتا ہے. اس طرح بہتر تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ احتیاط کے بغیر کام کروں. میں نے صبر کیا تاکہ وہ ہاسپٹل میں تم سے رابطہ کریں اور تم شمس تک پہنچ جاؤ. پھر ان کو بتاؤں. آج رات ان کو بتا دوں گا.
تو پھر آج رات سب انتظار میں کہ آپ پہنچ جائیں اور ان کو تیار کریں کیونکہ میں ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہوں.
اگر ان کو پتہ چل جائے کہ تم کون ہو اور وہ سمجھ جائیں گے کیسے عجیب آدمی ہے تو وہ تعجب نہیں کریں گے. اپنا کھانا کھا لو. ٹھنڈا ہو گیا. تمہیں جلدی جانا ہوگا.
زیادہ میں نے ہی باتیں کی. وہ چاہتا تھا میں اپنے بارے میں بتاؤں. جتنا ہو سکا چیخا چلایا.
جتنا ہو سکتا ہے تم اپنے آپ کو مایوس اور افسردہ اور سب سے کٹا ہوا دکھاؤ. اس طرح کے انسان ان کے لیے ایک بڑا اچھا شکار ثابت ہوتا ہے. تم اسے ایسے احساس دلاؤ کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے. ویسے وہ کیسا انسان تھا؟
ایک ملنسار آدمی. مہربان. بہت زیادہ مہربان. और बहुत ही सेहतमंद, इस उम्र में आसानी के साथ पहाड़ पर चढ़ गए। कोई भी ऐसी बात नहीं की जिससे धोखा दही और ब्लैकमेलिंग की बू आ रही हो।
बाद में भी वो नहीं कहेगा। इस किस्म के लोग इस तरह तुम्हारे सामने आगे नहीं आएंगे कि तुम्हें इनके बारे में जरा बराबर भी शक पैदा हो, और वो तुम्हें इस तरह ले जाएंगे कि तुम सोचोगे कि तमाम काम तुमने खुद किया है, तमाम फैसले तुमने खुद किए हैं, जबकि रिमोट इन्हीं के हाथों में होता है।
ये वो चीजें, वो चाहता है कि हर लाइन मुझे ज़बानी याद हो।
तो याद कर लो ना।
हमारी हकीकत हमसे भाग जाती है। अपने आप तक पहुंचने के लिए वाकई हमें अपने खोल से बाहर निकलना पड़ेगा और सूरज के सामने आना पड़ेगा।
सूरज, वो अपने आप को सूरज समझता है। हाँ, फिरकों के सरगने बहुत कुछ शिफ्ता होते हैं। ये वाला सूरज तक पहुंच गया।
ऐसे कीड़े की मानिंद जो तितली बनने के बाद अपने भीगे हुए परों को सूरज के सामने फैलाती है ताकि खुश्क हो जाएं और परवाज के लिए तैयार हो जाएं।
परवाज, पता है ना तुम्हें ये परवाज से क्या मुराद है उसका? मरजान की तरह परवाज करना।
मेरे ख्याल में फिलहाल वो मुझे आजमा रहा है।
उसे जब तक तुम्हारे ऊपर एतमाद हासिल न हो जाए असली बात की तरफ नहीं जाएगा। खुरमान ऐसा शख्स नहीं है कि तुम उसको पहली नशीस में जान लो कि वो क्या चाहता है।
मैं उसका एतमाद हासिल करने के लिए काम करता रहा।
तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसको अपना काम आता है। तुम ध्यान रखो कि कहीं इसके धोखे में ना आ जाओ।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
मैंने मजाक किया। बहुत ख्याल रखने की जरूरत है तुम्हें, बहुत ज्यादा। इम्कान पाया जाता है कि वो हर किस्म की अजीबोगरीब चीज तुमसे चाहे।
जैसे?
मिसाल के तौर पर एक किस्म का इशार, नए आने वालों को अजमाना फिरकों की इब्तदाई सुलह में शामिल है। इम्कान पाया जाता है कि वो तुमसे चाहे कि किसी को रागब कर लो या ठिकाने लगा लो हत्ता उसको।
मतलब यह कि वो मुझे कालेकार या कातिल में तब्दील कर दे।
अलबत्ता ये उनका आखिरी खतबा होगा। तुम्हें इस तरह इसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि एक माली सहूलत या कोई ताकत या कातिल बन जाओ। अहम बात यह है कि तुम सवाल के बगैर अतात गुजार, बात सुनने वाले और मकसद ये कि फरमाबरदार शख्स बन जाओ, लेकिन सहूलत ना बनो। क्या है, डर गए हो?
नहीं, आज की हमारी बातें।
मैं इसे बाद में सुन लूंगा। अगली मुलाकात की जगह तो तुम्हें पता है ना?
अगर अभी वो लड़की जिससे तुम प्यार करते हो आकर कह दे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम क्या करोगे?
वो जानना चाहता है कि तुम उसे अभी भी मोहब्बत करती हो या नहीं। उससे कह दो कि मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता।
मैं अब किसी से प्यार नहीं करता हूँ।
लेकिन तुमने उसकी खातिर अपने आप को मार दिया था।
मैं सोचता था कि उसको पा लेना मेरा मकसद है।
तो तुम्हारा मकसद इस वक्त क्या है?
मकसद
कहो। सूरज तक पहुँचना।
सूरज तक पहुंचना,
इस जगह से जहां पर तुम हो सूरज तक रास्ता तुलानी है।
आप मुख्तसर रास्ता मुझे दिखा दें उस्ताद।
शाबाश शाबाश। वो हमेशा ऐसे जवाब सुनने के लिए बेताब रहते हैं।
तुम्हें पता है कि क्या चीजें तमाम इंसानों के दरमियान मुश्तरक है?
तन्हाई, गम और बदकिस्मती।
ठीक है ठीक है, तुम इसे अच्छी तरह आगे ले जा रहे हो।
नहीं,
खुशी।
खुशी
मौत।
क्यों तुम इतना धंधे क्यों?
जाओ उस तक पहुंचो।
तमाम इंसानों का नुक्ता इश्तराक मौत है। खुशी, तनाई, प्यार, हसरत, गुर्बत, वो तमाम चीजें जो इंसानों के पास पाई जाती हैं और नहीं पाई जाती हैं, वो एक जगह पर पहुंच जाती है। मौत, मौत इंसान की सबसे बड़ी मिल्कियत है, सबसे बड़ी दौलत और सरमाया मौत है। अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारे पास कैसा खजाना है तो तुम जल्दी उसके पीछे जाओगे ताकि उसकी तलाश करो। मुझे यकीन है कि तुम बाकी लोगों से अच्छे हो।
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔ اچھا، نادر سر کے بقول کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟
بڑا عجیب آدمی ہے یہ۔ انسٹیٹیوٹ میں ظاہراً ایک سادہ سا مشیر ہے، لیکن جب وہ استاد شمس بن جاتا ہے تو 180 ڈگری بدل جاتا ہے، بالکل عرفا کی طرح بات کرنے لگتا ہے۔
دوغلا انسان اسی کو کہتے ہیں، بالکل سکے کی طرح۔ تم کبھی سکے کے دونوں رخوں کو بیک وقت نہیں دیکھ سکتے، ہر چند کے ہم دیکھ چکے ہیں۔
بیجا نہیں ہے کہ سعدی نے بھی یہ محاورہ خوب استعمال کیا ہے، موقع ملے تو بتاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ منافقت کیوں کرتے ہو، سانپ رہو یا مچھلی؟
دونوں ہی رہے تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، نئی معلومات تمہیں ملے تو مجھے اطلاع دینا۔
ضرور۔
سلامت رہو۔
یہاں اپنا ہاتھ آگے کرو۔ کیا دیکھتے ہو؟ اچھی طرح سے دیکھو۔
دو پتے۔
ان میں فرق کیا ہے؟ یہ دو قسم کے پودے ہیں۔
کوئی فرق نہیں ہے۔
اس کو چکھو، والا کڑوا ہے کہ نہیں؟
کڑوا ہے۔
اب اس والے کو چکھو، میٹھا ہے؟
میٹھا ہے۔
یہ دو پودے ہیں بالکل ایک جیسے ہیں، ان میں سے ایک میٹھا ہے لیکن فائدہ مند نہیں، لیکن وہ کڑوا ہے لیکن فائدہ مند ہے۔ میٹھا اور بغیر فائدے کا، اس کڑوے اور فائدہ مند کے ساتھ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے نقل اتارے اور اس طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے تشخیص دینا بہت مشکل کام ہے۔ کسی کو ہونا چاہیے کہ اچھے اور برے میں تشخیص دے اور تم کو بتا دے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔
آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔
یہ اس کی نقل اتار رہا ہے۔ تم مجھ سے چاہتے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم کیا کرو؟ اپنی طرح رہو، اس کی طرح، کڑوے پودے کی طرح کہ جس کے فوائد ہیں۔ تم بھی کڑوے رہو لیکن فائدے مند۔ اپنی زندگی جیو، کڑوی لیکن فائدے مند۔ یہ اس بات سے بہتر ہے کسی اور شخص کی طرح رہو، میٹھا لیکن بغیر فائدے کا۔
شک کر لیا اس نے وحید پر۔
वहीद बेफिक्र होकर कुछ नहीं करेगा, वो कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे शक पैदा हो।
तो फिर क्या कह रहा है, अपनी तरह रहो किसी और शख्स की तरह, ऐसा ना हो कि चालाकी दिखा रहा हो।
शायद चालाकी दिखा रहा हो, ये लोग बहुत मोहतात हैं।
सर माफ कीजिएगा, टेस्ट का जवाब आ गया है, एक किस्म की मामूली घासे गिरमिया के खानदान से। इन दोनों के टेस्ट से निशानदेही होती है कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक किस्म के पौधे हैं, ना कड़वाहट है उनमें ना मिठास।
बड़े ही धोखेबाज आदमी है, बातों और खामों को जाहिरी शक्ल को बहुत खूबसूरत बनाता है ये, शेर और नारों और बढ़ा चढ़ा कर एक खूबसूरत पैकिंग के साथ जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, खाली है। धोखेबाज। सिर्फ इसकी बातें सुनने मेरे लिए काफी नहीं है वही, तुम वहां हो, सांस से सांस मिलाकर इसके साथ बात करते हो, इसकी आंखों में देखते हो हर अलामत, हर चीज, झूठ बोलने के दौरान पलकों की कोई खास हरकत। मैं चाहता हूं कि तुम हर चीज मुझे बताओ, हत्ता कि छोटी से छोटी भी बात जो अहमियत नहीं रखती तुम्हारी नजर में, सब कुछ मुझे बताओ। तुम खुरमान के पास मेरी आंखें और कान हो, मैं चाहता हूं कि ये सब जान सकूं।
मुझे क्या कहना चाहिए था जो अब तक नहीं कहा, मुझे क्या करना चाहिए था जो नहीं किया। मुझे 3 हफ्ते हो रहे हैं अपने बीवी बच्चों से मिले हुए, अब तक का रिकॉर्ड नहीं था कि इतने दिन तक मैं एक दगलबाज के साथ उठना बैठना रखूं। वो तो सोचता है कि नऊज़ुबिल्लाह खुदा है, लैब का चूहा बनकर रह गया। अगर आप चाहते हैं कि जाने के वो कौन है क्या है तो उसे गिरफ्तार कर लें।
किस जुर्म में उसको गिरफ्तार करूं, इस बात पे कि इसने तुम्हें एक बेकार जड़ी बूटी दी है, इस बात पे कि इसने तुम्हें खूबसूरत खूबसूरत बातें बताई, किस जुर्म में वही? मैंने तुमसे कहा था कि कोई आसान काम नहीं है, नहीं कहा था मैंने? मैं तुम्हें इस काम से निकाल लेता हूं, काम को किसी और तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अब तक जो जो काम तुमने किया है, जो भी मेरे लिए लाए हो, मैं सबके लिए मशकूर हूं। मुझे पता है तुम दबाव में हो, तुम्हारी अहमियत मेरे लिए इन बातों से बहुत ज्यादा है, ये तुम खुद भी जानते हो। काम को छोड़ दो, जाओ जरा आराम कर लो।
उसने बताया कि इस हफ्ते अपने बास दोस्तों से मिलवाएगा।
बताया नहीं उसने कहा?
नहीं।
नहीं बताया कि वो कौन लोग हैं?
नहीं। माफ कीजिएगा, मुझे गुस्सा आ गया था।
तो क्या तुम्हें गुस्सा भी आता है? क्या गुस्सा किया था? नहीं नहीं, गुस्सा नहीं किया तुमने। तस्वीरों में क्या देख रही हो?
तमाम मुलाकातें पब्लिक प्लेस में हैं, जिनकी जगहों और टाइमों को भी उसने खुद मुअय्यन किया है।
ये बात तो तुमने मुझसे और अहमद से सुनी है।
सर
कोई नई बात बताओ।
इसकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरे की हालत इस बात की निशानदेही करती है कि वो रहमानी साहब को मनवाने में लगा हुआ है।
वो इससे ज्यादा कोई भी काम कर ही नहीं सकता।
मरजान, मंसूर, निगार, अफसाना, ये सारी कुर्बानियाँ इस बात की निशानदेही करती हैं कि वो अपने काम में माहिर हैं।
और ये सारे लोग ऐसे अफराद हैं जिनको हम जानते हैं। खुदा ही जानता है कि मकड़ी के इस जाले में कितने और लोग भी फंस चुके हैं।
क्या होता है कि बाज़ लोग इनकी बातों पर यकीन करते हैं और मान जाते हैं, लेकिन बाज़ लोग इन पर यकीन नहीं करते।
ये वो बात है कि जिसको हम तलाश कर रहे हैं।
वो मुकर्रर जगह पर पहुंच गया है, अकेला है।
मैंने तो देर नहीं की उस्ताद।
नहीं, मैं जल्दी आया हूँ आदत की बिना पर। चुप हो तुम?
एक्साइटेड हूं क्योंकि अब समझ गया हूं कि अकेला नहीं हूं, बहुत अच्छा है।
तन्हाई, तन्हाई एक बेएतबार मफहूम है। इंसान जब अपने घर वालों, बीवी बच्चों, करीबी दोस्तों के साथ हो तो तन्हा होता है। तुम्हें सीख लेना चाहिए कि तवानाई जखीरा करो। खानदान के साथ जब तुम हो तो तुम्हारी तवानाई जाय हो जाती है।
बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं। जिस किसी के साथ होता हूँ तो तन्हाई का एहसास करता हूँ।
तन्हाई उस वक्त ख़त्म होती है कि तुम ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारी अपनी तरह सोचते हैं, दुनिया को तुम्हारी तरह देखते हैं। उनके साथ जब तुम हो तो अकेले नहीं हो।
मतलब ये कि मेरी ये हमेशा की तन्हाई ख़त्म हो जाएगी?
अगर तय था कि ख़त्म ना हो तो तकदीर हमें एक दूसरे से ना मिलाती।
इससे पहले कि आपसे मिलूं मैं सोचता था कि दुनिया मेरे लिए ख़त्म हो गई है।
दुनिया के नए दरवाजे तुम्हारे सामने खुल गए हैं।
मैं आपका मरहूने मिन्नत हूँ सर।
मैंने सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी के तारीख गोशों में रोशनी बिखेर दी है। ये तुम हो जो समझने के लायक हो। तुम जैसा कुरै खाकी में बहुत कम है। अपनी कदर करो।
वाकई आप सूरज की तरह हैं। अफसाना सच कह रही थी, आप खुद सूरज हैं सर।
नॉर्मल बात है।
यहां फिरकों के नशिस्त यहां रखते हैं? ऐसा तो नहीं कि धोखा दे रहे हो?
इसके जवाब के लिए वहीद के वापस आने का इंतजार करना होगा।
मुझे अस्पंजारी साहब से काम है।
यहां से ऊपर चले जाएं।
देखो यहाँ कैसी जगह है, राह रोशन से इसका ताल्लुक है या नहीं?
जरूर। राह रोशन से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। एक महंगी जगह है जहां सिर्फ मालदार लोग ही जाते हैं। गैर कानूनी काम का भी कोई रिकॉर्ड उसका नहीं है। दरअसल ये दौलतमंदों के शो ऑफ के लिए बनाई गई है। इसकी वीआईपी जगह को भी किसी बेहजाद इस्फंदियारी नाम के आदमी ने किराए पर ले रखा।
जरा चेक करो, देखो किसी शख्स ने बेहजाद इस्फंदियारी के नाम से खुदकुशी की है या नहीं।
जी सर।
दूसरे मेहमानों के नामों को भी ढूंढो। अहमद
जी,
ये निशिस नहीं है, मेरे ख्याल में एक किस्म के नए आने वाले लोगों के लिए मीटिंग है।
अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, खुश आमदीद।
वालेकुम इस्फंदियारी साहब, ये मेहरदाद नया साथी है। परी नाज के साथ बैठो।
जी उस्ताद।
यहाँ पर कोई शख्स दूसरे शख्स से बर्तर नहीं है। आप सब रिहा होने के लिए आए हैं और आप लोगों को अपने आप और अपने वाबस्तगियों से रिहा होने का रास्ता मिल गया है। आप खुश रहें और खुशियां आपस में तकसीम करें। सूरज आप लोगों पर चमका है जो इस वक्त आप उसकी रोशनी पे नीचे बैठे हैं और यहाँ पर आप लोग आपस में मिल बैठे हैं और यहाँ से बाहर कोई नहीं समझ सकता कि आप कहाँ पहुँचे हैं। आप हरे भरे हो गए हैं, आपने नुशोनुमा पाई है। यहाँ से बाहर के लोगों और यहाँ से बाहर की वाबस्तगियों के बारे में बिल्कुल ना सोचें। पहला कदम रिहा होने के लिए यह है कि आप अपने बारे में सोचें, अपनी कदर व कीमत जान लें और रिहाई से लुत्फ अंदोज हो। महरदा से गुफ्तगू शुरू करते हैं। शुरू करो महरदा।
सूरज सूरज को सलाम।
सूरज को सलाम।
मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं अपने वजूद के अंधेरे में गुम हो गया था।
महरदाद, माजी के बारे में बात मत करो, खुशियां हमारे दरमियान बांटो, रिहाई के बारे में बात करो।
जी सर। सर ने मुझे नए साथी के तौर पर मुतारिफ कराया, मेरे लिए सब कुछ नया है। उस वक्त से जब मैं दोबारा पैदा हुआ हूँ, ऐसे नौमौलूद की तरह हूँ जो दुनिया का तजुर्बा कर रहा है। इस नई जिंदगी का जायका चखने से, इन दोस्तों के साथ वाकिफियत से जो खुद मेरी तरह जुल्मत की जाल से निकल गए हैं, इन पहले कदमों से जो मैं उठा रहा हूं, खुश हूं। सर ने एक सही बात की तरफ इशारा किया, मुझे अपने माजी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मेरे बाप, मेरी मां, मेरा खानदान, सब माजी में गुम हो चुके हैं, अंधेरे में। रिहाई ने मुझे रोशनी अता की।
रोशनी में खुश आमदीद।
रोशनी में खुश आमदीद
कहते हैं। वो खुद उसे रिहाई की नशिस कहते हैं। सब उस्ताद शम्स के तरबियत याफ्ता लोग हैं। हम सोचते थे कि खुरामान सिर्फ खुदकुशी करने वालों के दर पे हैं, ऐसा नहीं है। वो लोग दूसरे चैनलों से भी लोगों को जज्ब करते हैं। अहमियत इस बात की है कि अगला शख्स अपनी जायदाद इदारे के नाम पर कर दे, उसका तज्जिया करते हैं। अगर मुजाहमत की हो तो मौत की तरफ धकेल देते हैं, यानी वसीयत और खुदकुशी। ज़्यादातर अफराद जिन्हें मुतारिफ किया जाता है, वो उन शागिर्दों के ज़रिए हैं जो इस वक्त रिहाई की महफिल में मौजूद हैं।
रिहाई क्यों?
इसलिए कि ये ऐसी जगह है जहाँ पर हर शख्स अपनी ज़िंदगी के बंधनों से रिहा होने का ऐलान करता है। जितना ज़्यादा रिहा होता है, उसकी ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। इलाहे, उसका शौहर मर चुका है, उसके बच्चे ईरान में नहीं रहते, अपनी बिल्ली की दिल दादा थी, रिहा होने के लिए वो बिल्ली को इस हद तक खाना नहीं देती थी कि वो मर जाए। सामिया और फरजाद दोनों ने टेक्निकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, उनकी आमदनी अच्छी है, उनके पास एक घर था और रिहा होने के लिए घर अतिया कर दिया राह रोशन इंस्टीट्यूट को। इस वक्त वो उसी घर के किराएदार हैं। किसके?
राह रोशन के।
क्यों इनको खुदकुशी के लिए तैयार नहीं किया है?
मुझे नहीं पता। अब तक उसने मौत के बारे में तो बात की है, लेकिन खुदकुशी के बारे में नहीं। लगता है कि हम सब उसी बरजख में हैं और तय है कि हम रिहा हो जाएं।
और इसका मतलब यह है कि अपनी जेबें खाली कर दें।
और उन सब के माली हालात अच्छे हैं।
फिरकों की तरफ रुझान अमीर घरानों के साथ साथ दरमियानी तबकों के दरमियान और पढ़े लिखे अफराद में बहुत ज्यादा है। बिल्कुल इस बात के बरखिलाफ के लोग सोचते हैं गरीब कम पढ़े लिखे लोग कम ऐसे फिरकों की तरफ मायल होते हैं।
उसकी वजह आसाइश है?
नहीं, माशरे के इस तबके के लोगों को आमतौर पर कम ही माशरती जिंदगी रही है। क्या कहते हैं कि वो माशरे में कम थे, तालीम याफ्ता तबके में भी वो लोग फिरकों की तरफ रागिब होते जिन्होंने टेक्निकल तालीम हासिल की है, क्योंकि उनके जहन फार्मूले की तरह काम करते हैं।
परिनाज सुबह से रेस्टोरेंट में काम करती है, अपनी पूरी तनख्वाह वो दोनों हाथों से उठाकर इदारे को दे देती है रिहा होने के लिए। अलबत्ता ये खुरामान का कहना है, वो अपने माँ बाप से कट के रह गई है, ना उनकी खैर खैरियत पूछती है ना उनके साथ रहती है।
कितने साल की है?
17 साल।
माफ कीजिएगा
जी,
प्लीज मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आए जरा।
अभी आपके लिए लाती हूँ।
माफ कीजिए।
ٹپ نہیں لیتی، اس کے لیے کاؤنٹر کے پاس ایک ڈبا ہے، وہاں ڈال۔
میں چاہتا تھا کہ اس کا پیسہ دے دو۔
اچھا،
خوش قسمت ہے تمہارے ماں باپ جن کی تم جیسی لڑکی ہے، کام کرنا تمہارے لیے آر نہیں ہے، ضرور تم پر فخر کرتے ہوں گے۔
میرے ماں باپ مر چکے ہیں۔
مجھے افسوس ہے،
جب وہ زندہ تھے تب بھی مجھ پر فخر نہیں کرتے تھے۔
خدا ان کی مغفرت کرے۔
یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس کے ماں باپ زندہ ہیں، بہت پیسے والے لوگ ہیں۔ اس کی ماں بعض اوقات ریسٹورینٹ کے دروازے کے پیچھے سے چھپ کر اس کو دیکھتی ہے، پر اناز کے ڈر سے اندر نہیں آتی، یہ شور شرابہ مچا دیتی ہے۔
یہ لیجیے۔
بہت شکریہ آپ کا۔
اتنا ہی کہ پریناز اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی ہے، میں راضی ہوں۔
جھوٹ بول رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں۔
جوانی ہے بیگم، جوانی۔ سب اس دور سے گزرے ہیں، نہیں گزرے ہیں؟ آپ نہیں گزرے ہیں، سب گزرے ہیں۔
2 سال ہو رہے ہیں کہ ہم ان باتوں کے ذریعے خود کو بہلا رہے ہیں۔
پریناز خوش ہے، وہ اپنے کام کی جگہ پر خوش ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش ہے، فطری سی بات ہے کہ میں بھی خوش ہوں۔
وہ تو آپ کے ساتھ نہیں رہتی ہے۔
نہیں،
البتہ ایک عرصہ ہو گیا کہ آپ کو معلوم ہے نا، لیکن بہرحال پریناز ہمیں چاہتی ہے۔
لیکن پریناز نے تو مجھ سے کہا کہ اس کے ماں باپ مر چکے۔
میں نے کہا نا، ہمارا کام ہو گیا اپنے آپ کو فریب دینا۔
میں تیار ہوں اپنی جمع پونجی دے دوں تاکہ ہماری زندگی 2 سال پہلے کی طرف لوٹ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ پریناز کی خودکشی سے پہلے کی طرف۔
کیوں اس نے خودکشی کی تھی؟
وہ ہم سے مایوس ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ مجھ سے مایوس ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اصل بات کیا ہے، میں 2 سال پہلے کسی سے رابطے میں تھا، آپ سمجھ رہے ہیں نا، پریناز کو پتہ چلا اور اس کے بعد وہ سمجھ گئی کہ
وہ سمجھ گئی کہ مجھے بھی معلوم ہے، لیکن اس کا اظہار نہیں کرتی ہوں۔
کیوں؟
اس فیکٹری کی وجہ سے، ہم نے جگہ کو ساتھ مل کر بنایا تھا، میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔
مجھے پتہ نہیں ہے کہ پریناز نے کس لیے ان مسائل سے متعلق آپ سے بات کی ہے، ابھی ہم بہت خوش ہیں۔
ہم خوش نہیں ہیں، ہم بالکل خوش نہیں ہیں۔ البتہ پریناز کی خودکشی کے بعد ہم نے کوشش کی کہ دوبارہ ہر چیز کو اپنی پہلی والی حالت میں لے آئیں، لیکن پریناز کی کچھ لوگوں کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔
اس وقت پریناز ان کے ساتھ زیادہ خوش ہے، ہم بھی یہی چاہتے تھے۔
وہ اس سے کہتے ہیں کہ کیا کرے، اس سے کہتے ہیں کہ کیا نہ کرے، حتیٰ کہ وہ تمام تنخواہ جو وہ لیتی ہے اپنے دونوں ہاتھوں سے لے جا کر ان کو پیش کرتی ہے۔
ان کو آپ جانتے؟
نہیں، پریناز اجازت نہیں دیتی۔
آپ کیوں ان کے خلاف کیس کیوں نہیں کرتے؟
پریناز کی خاطر۔
آپ نے وہ تمام کام جو پریناز کی خاطر انجام دینے چاہیے تھے نہیں کیے ہیں، اب کچھ ایسے کام جو اس کے فائدہ میں نہیں ہیں آپ انجام دے رہے ہیں۔
ہمیں پتہ نہیں ہے وہ لوگ شاید اس سے کوئی چیز چاہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ فی الحال وہ لوگ اس کے ماں باپ بن گئے ہیں، اس کے سب کچھ۔
پریناز، میری پریناز ابھی بچی ہے، ہم اسے گنوانا نہیں چاہتے ہیں، ایک معصوم بچی ہے۔
کوئی بھی ابتدا سے برا نہیں ہوتا، میں چاہتا ہوں کہ مدد کروں، وہ واپس آ جائے۔
آپ کو جتنا پیسہ چاہیے ہم آپ کے لیے فراہم کر سکتے ہیں۔
لگتا تو ایسے ہے کہ پیسوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا ہے۔ نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے، میں یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں، میں لوگوں کے طریقہ کار پر کام کر رہا ہوں جو لوگ آپ لوگوں کا کردار پریناز کے لیے ادا کر رہے ہیں۔
وہ لوگ کون ہیں؟
کیا ہم ان کو جانتے ہیں؟
وہ لوگ ہر جگہ ہیں، وہ اس وقت عمل کرتے ہیں جب والدین ٹھیک طریقے سے اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے۔ اس صورت میں ہے کہ وہ آتے ہیں اور ہماری جگہ لے لیتے ہیں۔
آپ بتائیں ہم کیا کریں؟
کچھ نہیں، آپ کل دوپہر 2 بجے اس ریسٹورنٹ میں ملیں جہاں پر پریناز کام کرتی ہے،
नहीं नहीं नहीं, परिनास को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं कई बार वहाँ गई थी परिनास से मिलने के लिए, उसको गुस्सा आ गया, उसने गुस्सा किया और सबके सामने शोर मचाने लगी थी।
मैं इसी लम्हे के इंतजार में हूँ, जिस वक्त परिनास ने चीखना चिल्लाना शुरू किया है मैं मुदाखलत करूंगा, इसकी हिमायत करूंगा। तो आप मुझ पर इतराज करें।
ताकि वो क्या करे?
ताकि वो अपनी माँ के दिफा करे, ताकि मेरे सामने डट जाए, हत्ता कि मेरी तोहीन करे। जितना भी परिनास का रवैया मेरे साथ सख्त होगा आपके लिए फायदा मंद है।
और अगर वो आगे ना आए तो?
माफ कीजिए
जी,
प्लीज मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आए जरा। शुक्रिया।
क्या तय नहीं था कि आप यहाँ नहीं आएंगी?
मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे तुम्हारी याद आती है।
तुम मेरी माँ थी।
इतना मत सताओ मुझे।
मुझे कितनी बार एक बात को दोहराना पड़ेगा? मुझे हाथ न लगाओ, मुझसे बात न करो।
ठीक है, तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगी, तुम्हारे साथ बात नहीं करूंगी, सिर्फ यहाँ बैठ कर तुम्हें देखती रहूंगी।
कोई चीज देखने के लिए नहीं है, यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ। समझ नहीं रही हो?
चली जाए, ये कह रही है, आपको समझ नहीं आता?
मैं समझती हूँ कि ये माँ बेटी का एक झगड़ा है और आपसे कोई ताल्लुक नहीं है।
जी, इस सूरत में मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है जब आप लोगों का झगड़ा घर में हो, ना कि यहाँ जो एक पब्लिक प्लेस है। इन्होंने मोहतबा ने आपसे कहा है कि वो नहीं चाहती आपको देखें।
ये खुद जबान रखती है।
जी, इसने अपनी जबान से कहा है, लेकिन आपने सुना नहीं?
मैं इसकी माँ हूँ, जहाँ भी मेरा दिल चाहेगा अपनी बेटी को देखने जाऊंगी, उससे बात भी करूंगी।
मैं इस मोहतरमा को जानता हूँ, कल इन्होंने कहा कि इनकी माँ मर चुकी है। बहर आपने कोई काम किया है कि जिसकी वजह से इतना नाला है? तशरीफ ले जाए मोहतरमा, तशरीफ ले जाए, यहाँ यहाँ डिस्टर्ब न करें आप।
आप
तशरीफ ले जाए।
मैं इंतजार करता हूँ, आप तशरीफ ले जाए।
अब हमें एक और मरहले में दाखिल होने का इंतजार करना चाहिए। फिरके दर्जाबंदी और मनसब व मरतबे से लगाव रखते हैं। इस तरह इनके पैरों किसी मरतबे तक पहुंचने की सूरत में सोचते हैं कि जैसे दुनिया इनको दे दी गई है। वो लोग ऊपर जाने के लिए हर काम करते हैं। मजीद इसके एतमाद पर काम करो। इसको ये सोचने दो कि वो आला इख्तियार का मालिक है। जितना तुम ताबेदार होगे इतना ही अजीज होगे।
आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह।
मैं दूर ही दूर से तुम्हारे घर वालों की खबर रख रहा हूँ। वही उनका दिल उदास हो रहा है, लेकिन वो ठीक है, मेरा ध्यान है।
शुक्रिया।
कुछ हुआ है क्या?
जो लड़की थी ना, एक मर्तबा जिसके बारे में बताया था, परिनाज, एक अरसा हो रहा है कि वो रिहाई की मीटिंगों में नहीं आ रही है। खुदा हाफिज। उस्ताद, एक हफ़्ता हो रहा है आप मुझसे नहीं मिले। मैंने अफसाना को फ़ोन किया, वो मेरे फ़ोन नहीं उठा रही। उसने फ़ोन नहीं उठाया तो मैं अस्पताल चला गया। आपने क्यों मुझे छोड़ दिया है सर? मैं परेशान हूँ इस ज़िंदगी से। अफसाना कहती थी कि खुदा को नहीं देखा जा सकता, लेकिन उस्ताद शम्स बिल्कुल सूरज की तरह है, जब इरादा करोगे उन्हें देख सकोगे। मैंने कौन सा गुनाह किया? कैसी गलती मुझसे सरजद हुई? میرا جیس زندگی سے بھر کے آیا ہے تو پھر کہاں ہے وہ خوشی جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا؟ ان کتابوں کی ایک ایک لائن میں نے سینکڑوں بار پڑھی ہے۔ اگر سورج تم لوگوں سے روگردانی کرے تو سمجھ لو کہ تم میں انعکاس کی طاقت نہیں تھی۔ میں اکتا گیا ہوں استاد۔ آپ میرے سورج تھے، آپ نے مجھ سے منہ موڑ لیا۔ کیوں کیوں؟
اپنی زندگی میں کس چیز سے تم تھک گئے ہو؟
اس کے ہر چیز سے۔ 24 گھنٹے ہو رہے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں کہ کب اس پستی اور غلاظت سے چھٹکارا حاصل کروں گا۔
اندر تمہارے تمام رنج و غم اور تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ کھا لو، یہ تمہارے انتخاب کا لمحہ ہے۔ تم چاہو مت کھاؤ، کوئی تم پر اعتراض نہیں کرے گا۔ میں بھی تمہارے بارے میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ تم یہ بھی کر سکتے ہو کہ گولی نہ کھاؤ، اسی راستے سے نیچے چلے جاؤ اپنی زندگی کو جاری رکھنے کے لیے۔